ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में सभी सुरक्षा निकायों के साथ समन्वय कर काम करने का प्रधानमंत्री कार्की ने सेना को किया निर्देश। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ने शुरू किया देशव्यापी कृषि सर्वेक्षण। 17 करोड़ रूपये की लागत में बनाए गए बैतड़ी के पाटन विमानस्थल से 3 साल से उड़ान है बंद। और हांगकांग में आवासीय भवन में हुई आगलगी में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 128। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सुरक्षा संवेदनशीलता के आधार पर सभी सुरक्षा निकायों के साथ समन्वय कर काम करने का नेपाली सेना को निर्देश किया है। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री कार्की ने ऐसा निर्देश किया। आज नेपाली सेना के मुख्यालय भद्रकाली के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को दी गई जिम्मेदारी के मुताबिक घोषित तिथि में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित वातावरण में चुनाव संपन्न कराने में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। साथ ही जेनजेड आंदोलन के दौरान लूटे गए और गुम हुए हथियारों की खोज कर नियंत्रण में लेने के काम में प्रहरी सहित सुरक्षा निकायों के साथ सहकार्य करने, देश में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने और फरार अपराधियों को पकड़ने में जुटी पुलिस को सहयोग देने का भी प्रधानमंत्री कार्की ने निर्देश किया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आज जेनजेड आंदोलन के अगुआ प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में सरकार और आंदोलनकारी के बीच होने जा रहे समझौते के मसौदे का अंतिम रूप देने के विषय में उनके बीच बातचीत हुई थी। ये जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस संयोजक राम बहादुर रावल ने दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इसे राजनीतिक दस्तावेज बताते हुए कर्मचारी प्रशासकों को चिंता न लेकर सोमवार तक मसौदे को अंतिम रूप देने का निर्देश किया। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र और चुनावी सुरक्षा के लिए आवश्यक मियादी पुलिस की संख्या सुनिश्चित कर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में संबद्ध निकाय जुट गए हैं। अनुमान से अधिक संख्या में नए मतदाता बढ़ जाने के कारण पूर्व योजना से अधिक की तादाद में मियादी पुलिस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए संबद्ध निकाय तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान कुल 40 दिन सेवा देने वाले मियादी पुलिस को एक पुलिस के जवान के वेतन के बराबर आधारभूत वेतन, कपड़े, परिवहन खर्च सहित सुविधाएं दी जाएंगी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा है कि देश में आए संकट से उबरने के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की एकता प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज धनगढ़ी में आयोजित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की एकता संदेश सभा को संबोधित करते हुए संयोजक प्रचंड ने कहा कि 15 कम्युनिस्ट घटक एक साथ आकर कम्युनिस्ट पार्टी बनी है और व्यापक वामपंथी एकता के महाअभियान में नेकपा केंद्रित है। पार्टी की एकता संदेश सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के सह संयोजक माधव कुमार नेपाल ने कहा कि देश के विकास के संकल्प, देशभक्ति और राष्ट्रीय हित को केन्द्र में रखकर पार्टी आगे बढ़ रही है। सभा में नेता डॉ भीम रावल ने कहा कि ताजा जनादेश के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तैयार है और सरकार को चुनाव का माहौल बनाना चाहिए। धनगढ़ी से शुरू हुई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की एकता संदेश सभा 7 प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ने सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए देशभर में कृषि सर्वेक्षण शुरू किया है। मंत्रालय ने सभी स्थानीय तहों, प्रदेश के कृषि मंत्रालयों और संबंधित निकायों के समन्वय में आंकड़े संकलित करना शुरू किया है। गृह मंत्री ओम प्रकाश अरियाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। गृह मंत्रालय में आज मध्य प्रदेश की गृह, कानून तथा संचार मंत्री विमला अंसारी के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री अरियाल ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में सहजता लाने के लिए प्रहरी समायोजन ऐन के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने निर्धारित समय पर ही चुनाव कराए जाने की सरकार की अटल प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। ये जानकारी गृहमंत्री अरियाल के सचिवालय ने दी। बैठक में उनके बीच समूचे देश की शांति सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, प्रदेश केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय आदि पहलुओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। बैतड़ी के पाटन विमानस्थल के 3 साल से बंद होने के कारण 17 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित इस विमानस्थल की संरचनाएं अब अनुपयोगी हो रही हैं। एयरलाइन कंपनियों ने यात्री अभाव को वजह बताकर उड़ानें बंद कर दी हैं, जिसके कारण एक ओर स्थानीय लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है तो दूसरी ओर करोड़ों रूपये की संरचनाएं जीर्ण होती जा रही हैं। झापा जिले की झापा गांवपालिका 2 और गौरीगंज गांवपालिका 1 को जोड़ने वाले हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत 723 मीटर लंबे कनकाई पुल निर्माण का ठेका रद्द किया गया है। सड़क विभाग के अंतर्गत हुलाकी राजमार्ग निदेशनालय के योजना कार्यालय इटहरी ने पप्पू महादेव खिमती संयुक्त उपक्रम जेवी के साथ हुए ठेके को रद्द करने की सार्वजनिक सूचना कल जारी की थी। पक्का पुल डिजाइन एंड बिल्ड फॉर्मेट में 31 जेठ 2068 को इस परियोजना का ठेका समझौता हुआ था और इसका काम 30 जेठ 2072 तक पूरा होना था, लेकिन 5 बार समय बढ़ाए जाने के बाद भी काम की प्रगति केवल लगभग 56% ही थी। बता दें कि कर सहित 34.9 करोड़ रुपए के इस ठेका समझौते के रद्द होने पर निर्माण व्यवसायी की 1.71 करोड़ रुपए की कार्य संपादन जमानत जब्त हो जाएगी। मुस्तांग में हिम तेंदुओं स्नो लेपर्ड की संख्या और स्थिति के बारे में सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना इलाका कार्यालय जोमसोम ने 12 गुंग मुक्ति क्षेत्र गांवपालिका के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 15 कैमरे लगाकर उनके आवास, भोजन और संख्या की खोज शुरू की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। घाटी में स्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र में विशेषज्ञ का अभाव होने के कारण सेवा दुष्प्रभावित हुई है। केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सक का अभाव होने के कारण यहां से प्रदान की जाने वाली लीवर प्रत्यारोपण सेवा बंद हो गई है। केंद्र की कार्यकारी निदेशक डॉ कल्पना श्रेष्ठ ने बताया कि केंद्र में रहे एकमात्र लीवर प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ पुकार चंद्र श्रेष्ठ का अवकाश होने के बाद बीते सावन से ही लीवर प्रत्यारोपण सेवा बंद है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ सुधा गौतम को भी दे दी गई है। बता दें कि अब तक केंद्र से 34 मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने राम बहादुर राणा भाट सहित गैरकानूनी संपत्ति अर्जन के मामले में विशेष अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पुनरावेदन याचिका दायर की है। जल उत्पन्न प्रकोप नियंत्रण कार्यालय लमही दांग के इंजीनियर राम बहादुर राणा भाट पर सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करके 3,15,81,000 रूपये से अधिक की गैरकानूनी संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार के आरोप में विशेष अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पुनरावेदन दायर किया गया है। धनकुटा की महालक्ष्मी नगरपालिका में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से कीवी वाइन उद्योग की स्थापना की गई है। इस उद्योग की स्थापना होने से महालक्ष्मी नगरपालिका सहित आसपास के जिलों में उत्पादित कीवी को बाजार मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हांगकांग के ताइपो जिले में वांग फुक कोर्ट नामक एक आवासीय परिसर में भीषण आग लगी, जिसमें अब तक 128 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। लगभग 280 लोग अभी भी लापता हैं। ये आग सन 1983 में बनी 8-31 मंजिला इमारतों के परिसर में लगी थी और आग के तेजी से फैलने के कारण पॉलीस्टाइनिन बोर्ड और बांस की मचान बताई जा रही है। शुरुआती जांच में एक निर्माण कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर लापरवाही का आरोप है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने हांगकांग पुलिस बल के हवाले से बताया कि बुधवार को वांग फुक कोर्ट में लगी आग में संदिग्ध हत्या के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आग लगने से इमारतों का तापमान इतना अधिक हो गया था कि जली हुई सामग्री उड़ उड़कर दूर दूर तक गिर रही थी, जिससे आग और फैल गई। इस घटना के बाद हांगकांग सरकार ने सभी सरकारी आवासीय परिसरों की जांच का आदेश दिया है। बचावकर्मी आग पर काबू पाने और फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ड्रोन का उपयोग गर्मी के स्तर की निगरानी और आग दोबारा भड़कने से रोकने के लिए किया जा रहा है। प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक केंद्रों में अस्थायी आश्रय खोले गए हैं। हांगकांग सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 30 करोड़ हांगकांग डॉलर का राहत कोष बनाया है। करीब 900 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्थायी ठिकानों पर भेजा गया है। पहले चक्रवाती तूफान सिन्यार और अब चक्रवाती तूफान दित्वाह की वजह से दक्षिण पूर्वी एशिया के कई मुल्क हाल के सालों में आई सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहे हैं। तूफान के कारण श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया में लाखों लोग प्रभावित हैं। श्रीलंका में इस कारण हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 लोग अब तक लापता हैं। श्रीलंका में इसे हाल के सालों में आई अब तक की सबसे भीषण तबाही कहा जा रहा है। वहीं इंडोनेशिया के सुमात्रा में तूफान के कारण भीषण बाढ़ आ गई है और कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है। 10 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में सभी सुरक्षा निकायों के साथ समन्वय कर काम करने का प्रधानमंत्री कार्की ने सेना को किया निर्देश। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ने शुरू किया देशव्यापी कृषि सर्वेक्षण। 17 करोड़ रूपये की लागत में बनाए गए बैतड़ी के पाटन विमानस्थल से 3 साल से उड़ान है बंद और हांगकांग में आवासीय भवन में हुई आगलगी में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 128। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।